नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य की भजन लाल शर्मा सरकार के कार्यकाल के दो साल पूरे होने के उपलक्ष में कल जिलों में प्रचार रथ भेजे जाएंगे, साथ ही जयपुर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव और आई स्टार्ट कार्यक्रम होगा। प्रदेश में पेपर लीक रोकने के लिए गठित एसआईटी के प्रयासों से 296 भर्ती परीक्षाएं बिना पेपर लीक के संपन्न हुई। राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में एसआईआर का दूसरा चरण आज पूरा हुआ और आयुष मंत्रालय की ओर से दूसरा WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन 17 दिसंबर से नई दिल्ली में होगा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राज्य की भजनलाल शर्मा सरकार के कार्यकाल के दो साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 15 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने NRI चैप्टर्स के साथ संवाद किया। श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में कंपाला, टोकियो, दोहा, म्यूनिक, न्यूयॉर्क, न्यूजीलैंड, जाम्बिया, घाना और नैरोबी से आए प्रवासी राजस्थानियों से संवाद किया। कल राज्य सरकार की ओर से जयपुर से जिलों में प्रचार रथों को भेजा जाएगा। कल ही जयपुर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव और आई स्टार्ट कार्यक्रम का आयोजन होगा, साथ ही राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड का शुभारंभ भी होगा। इसी सिलसिले में कल जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में नवाचार दिवस स्टार्टअप्स एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के आयुक्त हिमांशु गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में होने वाले नवाचार दिवस स्टार्टअप्स एक्सपो में स्टार्टअप्स की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र होगी। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आई स्टार्ट राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित स्टार्टअप्स को फंडिंग चेक दिए जाएंगे, साथ ही जनवरी 2026 में आयोजित डिजी फेस्ट के अंतर्गत होने वाली हैकेथॉन का भी शुभारंभ किया जाएगा। ADG, ATS और SOG विशाल बंसल ने कहा है कि प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था उल्लेखनीय रूप से मजबूत हुई है। उन्होंने आज राज्य सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में ये जानकारी दी। श्री बंसल ने बताया कि पेपर लीक को रोकने के लिए बनी SIT की सक्रियता से इस साल 6 नवंबर तक RPSC, RSSB और अन्य संस्थानों द्वारा 296 परीक्षाएं बिना किसी पेपर लीक के संपन्न हुईं। SIT ने 138 प्रकरण दर्ज कर 394 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दो सालों में 92,000 से अधिक युवाओं को नियुक्तियां दी गईं और 153,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है, जिससे परीक्षा प्रणाली में विश्वसनीयता बढ़ी है। राज्य सरकार के दो साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आज से 15 दिन का सड़क सुरक्षा अभियान भी शुरू हुआ। कोटपूतली, बहरोड, सवाईमाधोपुर, बारां और झुंझुनू में अभियान के तहत अधिकारियों ने यातायात नियमों के पालन के लिए वाहन चालकों को फूल और चॉकलेट देकर जागरूक किया। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के वाहन चलाने के जोखिम बताए गए और सुरक्षित ड्राइविंग की अपील की गई। झुंझुनू सदर थानाधिकारी मांगीलाल मीणा ने कहा कि यातायात नियमों का पालन ही जीवन की सुरक्षा का सबसे प्रभावी उपाय है।
नियमों का पालन नहीं करा, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, सीट बेल्ट हो गया, हेलमेट हो गया, उसको एक फूल देके, गुलाब फूल देके ये प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप पूरा ट्रैफिक नियमों का पालन करिए, जिससे आपके परिवार को, आमजन को किसी प्रकार की कैजुअलिटी नहीं हो और यातायात की जो स्पीड मानक है उनका पालन करते हुए प्रॉपर रूप से गाड़ी को चलाएं, जिससे कोई जनहानि नहीं हो। कुछ लोग नियमों का पूरा पालन कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, उनको भी हम समझाइश कर रहे हैं। फूल देकर जो पालन कर रहे हैं उनको और प्रोत्साहित करें कि इस प्रकार अपन ट्रैफिक रूल्स का पालन कर दुर्घटनाओं में कमी ला सकते हैं।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाकर उपयोग करने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 736 लाख मीट्रिक टन की कमी आई है। श्री गडकरी ने कहा कि इथेनॉल पर्यावरण अनुकूल ईंधन है और ये प्रदूषण कम करता है तथा किसानों की आय बढ़ाने में मदद करता है।
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आत्मनिर्भर भारत का उद्दिष्ट रखा गया है उसमें हमारा फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट 22 लाख करोड़ रुपए का है। इथेनॉल एक ग्रीन फ्यूल है और उससे प्रदूषण कम होता है और इसलिए अभी तक जो इथेनॉल हमने यूज किया है उसके कारण विशेष रूप से कार्बन इमिशन रिडक्शन में 736 लाख मेट्रिक टन इक्विवेलेंट टू 30 करोड़ ट्री लगाएंगे इतना हमने उसमें प्रदूषण कम हुआ है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टूल्स को अपनाने, विकसित करने और लागू करने से संबंधित पहलों की निगरानी के लिए सर्वोच्च न्यायालय की AI समिति का पुनर्गठन किया है। पुनर्गठित AI समिति का उद्देश्य न्याय व्यवस्था में दक्षता, सुलभता और पारदर्शिता बढ़ाना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का दूसरा चरण आज संपन्न हो गया। इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद आयोग ड्राफ्ट मतदाता सूचियां प्रकाशित करेगा। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ड्राफ्ट सूची इस महीने की 16 तारीख को जारी होगी। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के अनुसार SIR फेज 2 की शुरुआत के बाद से 50 करोड़ 96 लाख से ज्यादा गणना प्रपत्र मतदाताओं में वितरित किए जा चुके हैं जो कुल प्रपत्रों का 99.98% है। इनमें से 99.59% प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है। राज्यसभा में राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा पर सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम राष्ट्र की आत्मा जागृत करने वाला मंत्र है और ये देश की संस्कृति के साथ जुड़ने का अवसर भी देता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम सभी के लिए प्रेरणा का भावनात्मक स्रोत है। उन्होंने कहा कि ये गीत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। श्री नड्डा ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रीय गीत ने सभी में ऊर्जा का संचार किया। राज्यसभा सांसद चुनीलाल गरासिया ने उदयपुर संभाग में बड़ी सादड़ी से मावली तक ब्रॉडगेज रेल लाइन का सर्वे कर उसे देबारी तक बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने सदन में कहा कि मेवाड़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। मावली में पावर बदलने और लंबी दूरी के कारण समय अधिक लगता है। उन्होंने भटेवर खैरोदा ओवरब्रिज से दरोली डबोक होते हुए देबारी स्टेशन तक नई लाइन बिछाने का आग्रह किया जिससे यात्रियों को अधिक सुविधा मिल सके। आयुष मंत्रालय की ओर से 17 से 19 दिसंबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। जयपुर के महाराव शेखाजी क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के प्रभारी सहायक निदेशक डॉ BR मीणा ने बताया कि शिखर सम्मेलन पारंपरिक चिकित्सा के साध्य आधारित एकीकरण को प्रोत्साहन देगा। उन्होंने बताया कि ये सम्मेलन वैज्ञानिक सत्यापन, डिजिटल स्वास्थ्य, जैव विविधता संरक्षण और पारंपरिक चिकित्सा में वैश्विक सहयोग पर केंद्रित होगा। 2023 में गुजरात में आयोजित पहले सफल आयोजन के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन की भारत मेजबानी करेगा। उन्होंने कहा कि ये शिखर सम्मेलन मानवता के स्वास्थ्य, खुशी और कल्याण के लिए पारंपरिक चिकित्सा को मुख्य धारा में लाने के सामूहिक वैश्विक प्रयास में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो भारत के सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामयः के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
पूरे विश्व से करीब 100 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। हेल्थ मिनिस्टर्स है और जो बॉडी है इस तरीके की सेक्रेटरी हेल्थ मिनिस्टर वो भाग लेंगे, जिसके अंतर्गत स्पेशल इसमें जो आयुष प्रणालियां हैं आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी सिद्ध सोवा रिंगपा और होम्योपैथी तैयारियों के लिए ऐसा है कि अभी करीब एक दो महीने से ही इसकी पूरी तैयारी है जो कि दिल्ली में भारत मंडपम है वहां बहुत बड़े स्तर पर इसका आयोजन होना है और वहां पर हमारे पूरे आयुष मिनिस्ट्री के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सब लोगों के पूरी उनकी अलग अलग जो व्यवस्था है वहां पर उनको प्रोटोकॉल्स वगैरह जो विदेशी लोग हमारे जो मेहमान आएंगे उन सबको अलग अलग ठहराने हर तरीके की व्यवस्था उनके आने ले जाने के लिए प्रोटोकॉल अधिकारी वगैरह भी नियुक्त किए गए हैं जो सदियों से लोगों की सेवा करती रही है और आज समग्र स्वास्थ्य के लिए विश्वसनीय समाधान के रूप में दुनिया भर में मान्यता प्राप्त।
जयपुर के जवाहर कला केंद्र के शिल्प ग्राम में आज राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जयपुर टाइगर फेस्टिवल का उद्घाटन किया। चार दिन के सातवें जयपुर टाइगर फेस्टिवल में कुल 53 स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां राजस्थान के 5 प्रमुख टाइगर रिजर्व के प्रतिनिधि देश के सुप्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स द्वारा बाघों की 150 से ज्यादा तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके अलावा टाइगर पेंटिंग और लाइव स्केचिंग, भारतीय डाक द्वारा पोस्ट स्टाम्प संग्रह, पुराने सिक्कों का प्रदर्शन, वर्चुअल शो, स्टोरी टेलिंग जैसे कई आकर्षक सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। फेस्टिवल न केवल कला, संगीत और लोक परंपरा का संगम है, बल्कि यहां बाघ संरक्षण और जिम्मेदार पर्यटन को सरल भाषा में समझाया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत डीग जिले के 3,000 से ज्यादा जनसंख्या वाले गांवों में भी अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अभियान से मिलने वाली राशि से इन केंद्रों में आधारभूत सुविधाएं, कंप्यूटर लैब और ई लाइब्रेरी विकसित होगी। अटल ज्ञान केंद्र बनने से ग्रामीण युवाओं को गांव में ही शहर जैसी डिजिटल सुविधाएं मिल सकेंगी। इससे सामान्य परिवेश के बच्चे भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर पाएंगे। इन केंद्रों में कॉमन सर्विस सेंटर भी होंगे, जहां सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य की भजनलाल शर्मा सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कल जिलों में प्रचार रथ भेजे जाएंगे, साथ ही जयपुर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव और आई स्टार्ट कार्यक्रम होगा। प्रदेश में पेपर लीक रोकने के लिए गठित एसआईटी के प्रयासों से 296 भर्ती परीक्षाएं बिना पेपर लीक के संपन्न हुई। राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में एसआईआर का दूसरा चरण आज पूरा हुआ। और आयुष मंत्रालय की ओर से दूसरा WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन 17 दिसंबर से नई दिल्ली में होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।